What a marvelous choir.
ये क्वार कितना बेहतरीन है. दुनिया के एक सबसे इतिहास में सबसे एक बेहतरीन घटना हुई है. सॉल की कहानी जो हर घर का कह रहा था. सॉल इतना खराब था क्योंकि उससे कई सदस्य क्रोध से बचने से आश्रम से यरूशलेम भाग गए. सॉल ने उनका पीछा किया लेकिन जब उन्हें दमिश्क दमास्क के निकट पर पहुंचाए एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और उसे शब्द सुनाई दिया कि ये शाउल तू मुझे क्यों सताता है. इस रूपांतरण के क्षण ने शाउल को हमेशा के लिए बदल दिया. असल में इसने उसका संसार को बदल दिया. हम जानते हैं कि इस तरह के प्रकटीकरण होते हैं. असली में हम शक देते हैं कि इसी तरह दिव्य अनुभव 1820 में जोसेफ स्मिथ नाम की लड़की के साथ हुआ था. यह हमारा स्पष्ट और निश्चित गवाही है कि स्वर्ग फिर से खुले हैं कि और परमेश्वर अपने भविष्यकाओं को प्रेरित से बात करता है. परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनके जवाब देता है. यदि भी कुछ लोग महसूस करते हैं कि जब तक उनके साथ सॉल या जोसेफ स्मिथ के जैसे अनुभव नहीं हो तो विश्वास नहीं कर सकते हैं. वे बैप्टिज्म के जल के पास खड़े रहते हैं पर उनसे प्रवेश नहीं करते हैं. वो गवाही के द्वारा इंतजार करते हैं लेकिन स्वयं सच्चाई को स्वीकार नहीं करते. शिष्य बनने के मार्ग में विश्वास का छोटा कदम उठाने के बजाय वे कोई आश्चर्यजनक घटना चाहते हैं जो उन्हें विश्वास करने के लिए मजबूर करें. वो अपने दिन दमास्कस के मार्ग में इंतजार कर अपना समय बेकार करते हैं. एक प्रिय बहन अपने पूरे जीवन में गिरजाघर के विश्वास में सदर रही पर उसके पास में एक गोपनीय दुख था. वर्षों पहले उसकी बेटी बीमारी से मर गई थी और इस दुखद घटना के गांव उसे हमेशा प्रभावित करते रहे. वो इस तरह से घटना के सभी उभरे गहनों से बहुत दुखी हो गई. उसे बेहद प्रयास किया गया लेकिन उससे समझ में कुछ नहीं आया. उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसे गवाही वैसी ही नहीं थी कि जैसे पहले हुआ करती थी और अंततः उसे महसूस किया कि जब तक परमेश्वर उसे खुद दर्शन न दें वो विश्वास नहीं कर सकती है. अन्य रूप से बहुत लोग हैं जो कई कारण से उस समय दमास्कस के मार्ग पर अपने आप को इंतजार करते हुए पाते हैं. वो शिष्य बनकर पूर्णकरण के काम में देर करते हैं. वो पुरोहित पाने के लिए और वो संदेह और भय से दूर करने के लिए काल ब्लॉक की चित्कारी के समय समान बचाने के लिए जाने के लिए मसीह का इंतजार करते रहते हैं. वे जो मेहनत के रूप से मसीह को सीखने से प्रयास करते हैं अंततः उन्हें जानेंगे. यही सच है. वे स्वामी के दिव्य चित्र को व्यक्तिगत से प्राप्त करेंगे लेकिन अवसर ये चित्र प्रज्वलित के समान मिलता है. एक समय में एक हिस्सा प्रत्येक हिस्से को अलग से पहचानना मुश्किल होता है. ये समय में नहीं आता है समझ में नहीं आता है ये पूरे पजल में कहाँ लगेगा लेकिन प्रत्येक हिस्सा चित्र को बनाने में हमें मदद करता है. अंततः जब आप काफी हिस्से जोड़ लिए जाते हैं हम उनकी सुंदरता को बचाने लगते हैं. फिर उन्हें अनुभव नजर डालने से हम देखते हैं कि वास्तव में उद्धारकर्ता हमारे साथ रहने आया था. एक बार में नहीं लेकिन शांति से हल्के से लगभग बिना पिता चले.
But quietly, gently, almost unnoticed. This can be our experience if we move.
यह हमारा अनुभव हो सकता है यदि हम अविश्वास से आगे बढ़ते हैं और दमास्कस के मार्ग पर बहुत देर इंतजार नहीं करते हैं. मैं आपको गवाही देता हूं कि स्वर्ग में हमारा पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है. वह आपसे प्रेम करता है. यदि जरूरत पड़ी तो प्रभु आपके बाधाओं को पार उठा ले जाएगा। आप टूटे हृदय और संतापी आत्मा से उन्हें शांति की खोज करते रहते हो। अक्सर वह हमें उन तरीका से बात करता है जिसके लिए हम केवल हृदय को से सुन सकते हैं। उसकी वाणी को अच्छी तरह से सुनने के लिए हमें जीवन के संसार के शोर को तेज आवाज को कम करना होगा। यदि हम किसी भी कारण से आत्मा की आवाज को सुनना करते या रोकते हैं तो ये धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती है और अंत में हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। आओ हम इन आत्मा की वाणियों को सुनना सीखें और उन्हें फिर उत्सुकता से इनका पालन करें। हमारे प्रिय थॉमस मॉन्सन ने इससे संबंध में हमारे उदाहरण देते हैं। आत्मा के फुसफुसाओं पर उन्होंने ध्यान देने के लिए बहुत सी कहानियां हैं। एल्डर हलन का एक ऐसा उदाहरण बताते हैं। एक बार एक जब अध्यक्ष मॉन्सन लुजियाना में किसी काम से गए थे, स्टेक अध्यक्ष से उन्हें पूछा गया कि उनके पास 10 साल की लड़की क्रिस्टल, जो कि कैंसर की अंतिम अवस्था में थी, से मिलने का उनके पास में समय होगा। क्रिस्टल का परिवार अध्यक्ष मॉन्सन के जाने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसका घर बहुत दूर था और कार्यक्रम इतना व्यस्त था कि उनकी समय निकाल पाना मुश्किल था। तो इसके स्थान पर मॉन्सन ने कहा कि जो भी स्टेक सम्मेलन के दौरान प्रार्थना करते हैं वे क्रिस्टल को अपनी प्रार्थना में शामिल करें, अवश्य प्रभु और उनके परिवार जान जाएंगे। और जब सम्मेलन के शनिवार के सत्र के दौरान जब प्रेसिडेंट मॉन्सन बड़े, उन्होंने कहा बालकों को मेरे पास आने दौरान मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा है का है। वार्ता के लिए उनके लिखे विवरण धुंधले हो गए। उन्होंने सभा के लिए तत्त्वय विषय पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन उस छोटी लड़की का नाम और शक्ल उनके ध्यान से नहीं हट पा रहे थे। उन्होंने आत्मा को सुने और अपने कार्यक्रम से फिर से तय किया। अगली सुबह जल्दी अध्यक्ष मॉन्सन ने निन्नाओं को छोड़ा और एक से बिस्तर निकट करने के बाद 1 किलोमीटर की यात्रा करी। एक बार वहां पहुंचकर उन्होंने उठने बोलने से असमर्थ बच्ची पर दृष्टि डाली। उसकी बीमारी ने उन्हें दृष्टिहीन कर दिया था। उस दृश्य और प्रभु की आत्मा का गहराई से स्पर्श किए जाने पर भाई मॉन्सन ने बच्ची के कमजोर हाथ पर अपने हाथ पर कहा, क्रिस्टल मैं आ गया हूँ। मुझे बहुत प्रयास करके वो धीरे से बोली, भाई मॉन्सन मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मेरे भाई और बहनों, आओ उनके सामने समान बनने की कोशिश करो जिन पर प्रभु उनकी फुसफुसाओं को सुनने और जवाब देने के लिए भरोसा करता है, जैसे शाओल ने अपने दमास्कस के राज पे किया था। प्रभु तू मुझसे क्या करवाना चाहता है?
Another reason we sometimes do not recognize the voice of the Lord in our lives is because the revelation.
कभी-कभी हम अपने जीवन में प्रभु की आवाज को इसलिए नहीं पहचानते हैं क्योंकि हो सकता है कि इन प्रकटीकरणों की आत्मा हमारे प्रार्थना के जवाब के रूप में हमें सीधे प्राप्त नहीं होती है।
As we seek answers to questions and concerns in our personal life.
स्वर्ग में हमारे पिता ने हमें पहले समस्या को ठीक करने से समझने फिर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना देने की आशा करता है। जब हम व्यक्तिगत जीवनों को प्रश्न चिंताओं के उत्तर खोजते हैं, हमारे पास हमारे स्वर्गीय पिता का आश्वासन है कि वह हमें सुनता है और हमें प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उत्तर भरोसे मित्रों का परिवार की आवाज का विवेक धर्मशास्त्र भविष्यताओं के शब्दों द्वारा आ सकता है। ये मेरा अनुभव रहा है कि सबसे अधिक शक्तिशाली वाणियों में हमें कुछ न केवल अपने लाभ बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी मिलती है। यदि हम केवल अपने विषय के में सोचते हैं तो हम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली आत्मिक अनुभव और गहन प्रकटीकरण से वंचित कर रह जाएंगे। प्रेसिडेंट कैंपल ने इसके बारे में सिखाया है। उन्होंने कहा परमेश्वर अवश्य हमें ध्यान देता है और वो हमारा ख्याल रखता है, लेकिन अक्सर वो किसी अंत व्यक्ति की हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। भाई और बहनों, हम में एक प्रत्येक के पास एक दूसरे की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने और उनके आसपास के लोगों तक पहुंचने, आशीष देने और उन्हें ऊपर उठाने की अनुबंधित जिम्मेदारी है। जैसे उद्धारकर्ता ने किया था, हम कभी कभी महत्वपूर्ण बातों को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हम ये हमारी प्रार्थनाओं का सीधा उत्तर नहीं होती हैं, लेकिन ये किसी अन्य की प्रार्थना का उत्तर हो सकती है। अक्सर हमारी प्रार्थना का उत्तर तब नहीं मिलता जब घुटनों पर बल्ब झुके होते हैं, लेकिन तब मिलता है जब प्रभु के और आसपास के लोगों की सेवा में सक्रिय होते हैं। निस्वार्थ सेवा का कार्य और समर्पण हमारी आत्माओं को शुद्ध करता है, हमारी आत्मिक आंखों से पर्दे को हटाता है और स्वर्ग को जरूर को खोल देता है। कभी कभार प्रभु हमें बताता है कि कुछ चीजें हमारे लिए हैं, केवल हमारे लिए, लेकिन अधिकतर ये सत्य की गवाही नहीं उन्हें देता है जिस पर उन्हें भरोसा करता है कि वे उन्हें उन दूसरों के साथ में बांटेंगे। ऐसे आदम से लेकर अब तक प्रत्येक भविष्यवक्ता के साथ होता आया है। प्रभु अपने पुनः स्थापित गिरजाघर के सदस्यों से आशा करता है कि वे अपने मुंह खोलें और सुसमाचार की घोषणा आनंद से करें। यह हमेशा आसानी से नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ हाथ गाड़ी खींचकर किलोमीटर मैदान पर जाने करना आसान है, लेकिन ये विश्वास धर्म के विषय में अपने मित्रों सहयोगों से बात नहीं कर पाते हैं। वे चिंता करते हैं कि वे सोचेंगे और उनके संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास बांटने के लिए खुशी का संदेश है, यह आनंद का संदेश है। वर्षों पहले हमारे परिवार ऐसे को लोगों के बीच रहता था और काम करता था जो किसी भी तरह से हमारे धर्म के नहीं थे। वे जब हमसे पूछते थे कि हमारा रविवार कैसा था, हम खेल सिनेमा मौसम और विषय के बात करने से बचते और रविवार के परिवार के रूप में धार्मिक अनुभव के बांटने का प्रयास करते थे। जैसे प्रभु सभा में युवा वक्ता ने युवा बल के लिए आदर्शों के जीवन के विषय में क्या बताया, कैसे हम युवक के शब्दों से प्रभावित थे जो मिशन पर जा रहा था, या सुसमाचार गिरजों में हमें परिवार के रूप में विशेष चुनौती या सामने करने में कैसे मदद की। हम भाषण देने या जरूर अधिक बोलने का प्रयास नहीं करते। मेरी पत्नी हैरियट हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणादायक ऊपर उठाने वाली है, मजेदार बातों में हमेशा करने आगे रहती थी। इससे अक्सर गहन चर्चा करने का मौका मिलता है, लेकिन जब मित्रों से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के विषय में बात करते हैं, वो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता था, ये तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हारे पास हमारा गिरजाघर है। हमारे पास इतने सामाजिक माध्यम और कई गुना अधिक या कम उपयोगी उपकरण होने के कारण सुसमाचार की अच्छी बातों को बांटना आसान है और इनका प्रभाव पहले की अपेक्षा अधिक असरदार होता है। असल में मुझे लगता है कि जो आज मेरी वार्ता को सुन रहे हैं उनमें से कुछ ने यह संदेश अब तक भेजा है, भेज भी दिया होगा कि इन्हें बोलते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अभी तक उड़ान के विषय में कुछ नहीं कहा है।
My young friends,
मेरे नौजवान मित्र, अपने मुंह खोलने के प्रभु इस प्रोत्साहन में भगवान हमें ये कहने को बोलता है ताकि दूम लोगों को अपने दूसरे लोगों का गॉस्पल में लाएं, पर ये ध्यान रखें हमें उसी समय करना है जब वो सही समय हो और सही स्थान हो। भाई और बहनों, आधुनिक तकनीक के आशीषों के साथ में उसके बच्चों के लिए परमेश्वर की योजना हम आभार और आनंद व्यक्त कर सकते हैं जिसने केवल हमारे काम करने बल्कि संसार भर में सुना जा सकता है। कभी कभी गवाह का एकमात्र वाक्य ऐसी घटनाओं को सुसक्रिय कर सकता है जिसका प्रभाव किसी के जीवन में अनंतता के लय को हो सकता है। सुसमाचार के प्रचार करने का सबसे प्रभावशाली तरीका उदाहरण के द्वारा होता है। यदि हम एक अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीते हैं तो लोग हमारे बातों पर ध्यान देंगे। यदि यीशु मसीह का तेज हमारे जीवनों में चमकेगा, यदि संसार के साथ आनंदित और शांति से रहते हैं, लोग जानना चाहेंगे ऐसा क्यों है। प्रचार कार्य के विषय में कहे महानतम प्रवचनों में से एक श्रेय एससीजी के संत फ्रांसिस के सरल विचार में था। हर समय अपने व्यवहार के द्वारा सुसमाचार सिखाओ और यदि आवश्यक हो तो शब्द को उपयोग करो। ऐसे करने से अवसर हमारे चारों ओर हैं। दमास्कस के मार्ग पर खड़े होकर अंतर मत करो। मैं बयान देता हूं कि वर्तमान समय में प्रभु अपने भविष्य और प्रेरितों से बात करते हैं। वह उन सब से बात करता है जो उनके उसके पास सच हृदय और सच्ची अभिलाषा के साथ हैं। संदेह न करें, याद रखें कि धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। 12 परमेश्वर से प्यार अपने प्रेम करता है। वो आपसे प्रार्थना को सुनता है। वो अपने बच्चों से बात करता है जिन्हें आराम शांति को और समझ देता है जिसे खोज कर वो उसके मार्ग पर चल सकें। मैं अपने पवित्र गवाह देता हूँ कि यीशु मसीह का अंतर नगर गिरजाघर प्रभु के बताए मार्ग पर चल रहा है। ये उसका मार्गदर्शन पाता है जिसका नाम हम धारण करते हैं। हमारे पास में जीता हुआ प्रॉफिट है जो हमें मार्ग दर्शन देता है, यीशु मसीह का नाम भी हम लेते हैं। भाइयों और बहनों, हमें दमास्कस के राग में अपने अधिक समता नहीं करना है। आओ हम विश्वास, आशा और प्रेम में हिम्मत से आगे बढ़ें और हमें उस ज्योति को पाकर आशीषित हों जिससे हम शिष्य होने के मार्ग में को प्रयास कर रहे हैं। सच्चा शिष्य बनना है। मैं इसी मसीह के नाम में अपनी गवाही देता हूँ। आमीन।